स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 17 मई और दिन शुक्रवार। सातवें और अंतिम चरण के लिए थम जाएगा आज चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर क्या सोचती हैं महिलाएं?
अमित शाह के आने के बाद जैसी हिंसा हुई ऐसा हमने सुना था, लेकिन कैपिटल में कभी, मतलब इन कैलकाटा ऐसा हुआ है ऐसा हमने देखा नहीं है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन दुमका से 12वीं बार है मैदान में।
देखिए, शिबू सोरेन एक विचारधारा है और उस विचारधारा को जानने के लिए उनकी जीवनी जानना बहुत जरूरी है।
भाजपा महासचिव और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से होगी खास बातचीत।
पूरे देश में 6 चरणों का चुनाव होने के बाद जो देश भर से रिपोर्ट आई है उससे बात स्पष्ट है कि पिछली बार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने वाली है और NDA गठबंधन की सीटें भी बढ़ने वाली है।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार दिनेश उप्रेती से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी करने और नई प्रवासन नीति का खाका पेश किया है। उन्होंने कहा कि युवा, पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोलने वालों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। योग्यता के आधार पर अभी अमेरिकी नौकरियों में आप्रवासियों का हिस्सा 12% है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ये हिस्सेदारी वैध आप्रवासियों के लिए 50% से अधिक हो। ट्रंप ने इसे व्यवस्था का आधुनिकीकरण बताया है, लेकिन डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप के प्रस्ताव में कई अहम मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि प्रस्तावित नीति में उन लोगों को नागरिकता देने का रास्ता नहीं निकाला गया है जिन्हें बच्चे के रूप में अमरीका लाया गया था, लेकिन उन्हें अमरीका में रहने का वैध अधिकार नहीं है। ट्रंप ने कहा,
ओनली 12% ऑफ लीगल इमिग्रेंट्स आर सिलेक्टेड Based on skill or based on merit.
अभी सिर्फ 12% ही वैध आप्रवासियों को उनकी दक्षता या योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में ये प्रतिशत 60 के लगभग है और कई देशों में तो ये 70-75% तक है। सबसे बड़ा बदलाव हम दक्ष आप्रवासियों की तादाद 12 से बढ़ाकर 57% करने जा रहे हैं और देखेंगे कि इसे और कितना बढ़ाया जा सकता है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 19 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। 7वें चरण में 8 राज्यों में 59 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर वोटिंग होगी। इसी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उनके गृह जनपद की सीट बचाने की चुनौती भी है। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग ने कहा है कि उसने विवादित मॉडल 737 मैक्स के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का काम पूरा कर लिया है। इंडोनेशिया और इथियोपिया में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कई देशों ने बोइंग 737 मैक्स की उड़ानों पर बैन लगा दिया था। बोइंग के इस अपग्रेडेशन को अब अमेरिका के संघीय विमान प्रशासन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियामकों की मंजूरी चाहिए होगी। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा है कि चीन की टेलीकॉम कंपनी ख्वावे पर अमरीकी बाजार में पहुंच पर लगा प्रतिबंध आज से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का ये फैसला चीन के साथ किसी तरह की बातचीत शुरू करने से जुड़ा हुआ नहीं है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने वादा किया है कि जून के पहले हफ्ते में ब्रेक्सिट पर वोटिंग के दौरान वो अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए टाइम टेबल निर्धारित करेंगी। पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वह उत्तराधिकारी के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के दावेदार होंगे। जॉनसन के पिता स्टैनली जॉनसन ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से बात नहीं की है क्योंकि वो विदेश में थे, लेकिन बोरिस की इस घोषणा से उन्हें हैरानी नहीं हुई है। स्टैनली जॉनसन ने कहा,
I can tell you, I think it's a very fine idea because I haven't been in touch. I can tell you,
मैं आपको बता सकता हूं और मैं सोचता हूं कि ये बेहतरीन विचार है। पिछले 10 दिन में मैं बिना वाईफाई, ईमेल और फोन के था। अब वापस लौटा हूं और पाता हूं कि ब्रेक्सिट की स्थिति अब भी उलझी हुई है और शायद नेतृत्व में इस समय की बदलाव की जरूरत है। ये थे स्टैनली जॉनसन के शब्द। ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो ने अपने सबसे बड़े बेटे और सांसद फ्लाविओ पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी हवाला के आरोपों को खारिज कर दिया है। BBC समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है मई की 17 तारीख और दिन है शुक्रवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से। लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण में 59 सीटों के लिए होने वाले मतदान का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में कल रात 10 बजे ही प्रचार खत्म हो गया। चुनाव आयोग के एक फैसले के कारण ऐसा हुआ और वजह थी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कोलकाता में हुए रोड शो के दौरान हुई हिंसा। लोकसभा चुनाव के लगभग हर चरण में इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ न कुछ हिंसक वारदातें हुई हैं। बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं, लेकिन हिंसा की इन घटनाओं से पश्चिम बंगाल की युवा महिलाएं किस हद तक प्रभावित होती हैं, यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य पहुंची जाधवपुर यूनिवर्सिटी में, जहाँ उन्होंने कई छात्राओं से बात की।
हम जाधवपुर यूनिवर्सिटी में हैं और हिंसा का बंगाल से बहुत पुराना नाता है और जाधवपुर यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स, उनसे हम यही बात करने वाले हैं कि क्या पॉलिटिक्स में जाने से कुछ थोड़ा रोकती भी है इस तरह की वायलेंस।
अमित शाह के आने के बाद जैसी हिंसा हुई ऐसा हमने सुना था, लेकिन कैपिटल में कभी, मतलब इन कैलकटा ऐसा हुआ है ऐसा हमने देखा नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा डर ही गए थे, वी वर टेकन अबैक मोस्टली बिकॉज दिस इज नॉट,
और जो इससे पहले वायलेंस है वो हम बाहर सुनते हैं, शहर के बाहर रूरल एरियाज में।
आई एम ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन दैट केस, या एवरी डे इज काइंड ऑफ अ टेरर फॉर अस बिकॉज द वे वी हैव, वी आर सीइंग दैट आवर,
हर रोज आपको एकदम आतंकित करता है, इतना डर लगता है।
हाँ, डर तो लगता ही है।
तो फिर भी आप हैं, आप उस पॉलिटिक्स से हटी नहीं, आपने कहा डर में रहते हैं।
नहीं, डर में, लाइक इफ वी आर इन द टेरर एंड वी टेंड टू स्टेप बैक, देन व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स आर वी डूइंग।
तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है कि वो कह रही हैं कि चाहे वायलेंस हो उसके बाद भी औरतें या महिलाएं पीछे नहीं हटेंगी एंड वील कंटिन्यू टू बी इन पॉलिटिक्स।
अभी बंगाल में जितने सारे दंगे फसाद हो रहे हैं, इससे पहले मैं बोल सकती हूँ कि जब लेफ्ट गवर्नमेंट था 34 ईयर का, तब दंगा फसाद ऐसे नहीं लगता था।
अच्छा, अगर हम ये लेफ्ट और तृणमूल में किस कौन ज़्यादा दंगा करता है इस बहस में नहीं पड़े, पर आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं, उसके बाद अगर आप अगले स्टेप पे जाती हैं MLA के या MP के, पार्लियामेंट तक जाती हैं, तो इस तरह का जो वायलेंट एक माहौल है इस इलेक्शंस में भी हमने देखा, क्या वो आपके इस डिसीजन पर कोई असर डालता है?
नहीं, क्योंकि पूरे सोसाइटी में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली हर जगह पे हर किसी को डोमिनेट किया जा रहा है, सिर्फ नॉट ओनली वुमेन्स, या वुमेन्स के साथ दलित हैं, उसके साथ और भी बहुत सारे जो मेहनती लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी, और स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे यहाँ के, उनके ऊपर भी सेम तरीके से उनको डोमिनेट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर हम लोगों को डोमिनेट किया जा रहा है तो हम चुप रहेंगे।
सिर्फ 12% MPs हैं हमारे इंडियन पार्लियामेंट में जो औरतें हैं, तो यहाँ पे सब कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वायलेंस है, डजंट स्टॉप अस, पर फिर क्या रोकता है?
मुझे लगता है कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हम औरतों का बनता है कि हम अपने वर्थ को प्रूफ करें कि नहीं, विमेन कैन ऑल्सो मेक देयर मार्क इन वेरियस फील्ड्स, इज नॉट जस्ट पॉलिटिक्स। तो आई फील दैट द ड्यूटी इज़ ऑन अस,
हमारे हाथ में, हम बदलाव ला सकते हैं। और कुछ कुछ क्लेम भी है, जैसे ममता बनर्जी का क्लेम है कि उन्होंने बहुत औरतों को इस बार टिकट दिया है, 41% अपनी औरतों को टिकट दिया है।
तो नुसरत जहान और दैट मिमी चक्रवर्ती, दे डोंट रिप्रेजेंट द वुमेन फोक। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कितना वो लेने की कैपेबल है और कितना यूज़ कर सकते हैं। 41% लड़की लोगों को दे दिया, इसका मतलब वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द बेसिक इशूज़, दैट शाम के बाद मैं सेफ नहीं हूँ रास्ते में घूमने के लिए जहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं होता है।
आप 41% दो या 100% दो, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। यू शुड फर्स्ट इंश्योर वीमेन सेफ्टी, देन टॉक अबाउट द परसेंटेज यू आर गिविंग इन।
मुझे लगता है सब यहाँ पे इस चीज़ के लिए अग्री कर रहे हैं कि सूरत बदलने की ज़रूरत है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब उसको लेके बहुत उम्मीद आप में है और आपको लगता है कि हम उससे भाग नहीं सकते, औरत कह के या महिला कह के हम इससे बच नहीं सकते।
तो पश्चिम बंगाल के बाद अब चलते हैं मध्य प्रदेश। कल भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर का महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को देशभक्त बताने वाला बयान छाया रहा। इस बयान पर लगातार राजनीति गर्म रही। कांग्रेस ने इस बयान के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी लपेटा, तो वहीं भाजपा ने भी खुद को बयान से अलग करते हुए साध्वी प्रज्ञा से माफी मांगने को कहा। और क्या कुछ खास रहा कल चुनावी हलचल में, सुनिए नवीन नेगी से।
मध्य प्रदेश के भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान के साथ कल राजनीतिक सरगर्मियों की शुरुआत हुई। चुनावी गलियारों में अलग अलग पार्टियों की ओर से इस बयान की आलोचना की गई। साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को एक देशभक्त बताया। पहले साध्वी प्रज्ञा का वह बयान सुनिए।
नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा।
इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस वार्ता कर साध्वी प्रज्ञा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की भी आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह बयान मोदी और अमित शाह के बढ़ावा देने की वजह से आया है।
प्रज्ञा ठाकुर को दंडित करने की बजाय सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टेलीविजन साक्षात्कारों में प्रज्ञा ठाकुर का बचाव किया, बल्कि उसकी पीठ थपथपाई, और ये उसका परिणाम है कि अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को वही प्रज्ञा ठाकुर मोदी जी और अमित शाह जी की चहेती सच्चा देशभक्त बताने का दुस्साहस और घोर पाप कर रही हैं।
बयान पर विवाद बढ़ने के बाद भाजपा भी बचाव की मुद्रा में आई और उन्होंने प्रेस वार्ता कर इस बयान को पार्टी लाइन से अलग बताया।
अ स्टेटमेंट मेड बाय बीजेपी भोपाल कैंडिडेट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर।
भाजपा प्रवक्ता जेवीएल नरसिम्हा ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी के संदर्भ में जो भी बयान दिया है, हम उससे सहमत नहीं हैं और चाहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा इसके लिए माफी मांगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मऊ में एक चुनावी रैली के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का जिक्र किया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने अमित शाह पर हमला किया और ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा। उन्होंने ईश्वर चंद विद्यासागर की एक भव्य मूर्ति बनाने का वादा भी किया।
टीएमसी के गुंडों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ दिया। ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के विजन के लिए समर्पित हमारी सरकार उसी जगह पर पंच धातु की एक भव्य मूर्ति की स्थापना करेगी और टीएमसी के गुंडों को जवाब देंगी।
दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल राजस्थान पहुंचे। वहां उन्होंने अलवर गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की। इसके बाद वो बिहार की राजधानी पटना में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस की न्याय योजना का जिक्र किया।
न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन के अंदर डीजल है। जैसे ही ये डीजल अंदर जाएगा, हम चाबी घुमाएंगे, धड़ाक से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी।
लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आज शाम 5 बजे से राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। इसके बाद 19 मई को जनता अंतिम चरण के चुनाव में मतदान करने निकलेगी।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 75 साल के शिबू सोरेन दुमका से 12वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनकी जीत होती है तो वो यहां से 9वीं बार सांसद बनेंगे। दुमका झारखंड राज्य की उप राजधानी है और संथाल प्रगणा प्रमंडल का मुख्यालय भी। तो क्या इस बार फिर चुनाव जीतेंगे शिबू सोरेन या टूटेगा उनका तिलिस्म? सुनिए दुमका से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
दुमका में झुमका है रवलू, काशी में कनवाली, हम पुछली की के चोरवल।
झारखंड के सियासत इंजनों दुमका शिफ्ट कर गई है। शहर के अधिकतर होटलों में नो रूम के बोर्ड लग चुके हैं और चौक चौराहों पर बड़े बड़े चुनावी होर्डिंग्स। इन्हीं होर्डिंग्स में शामिल है झारखंड मुक्ति मोर्चा का वह होर्डिंग जिस पर लिखा है अंतिम सांस तक संघर्ष शिबू सोरेन। इस होर्डिंग पर शिबू सोरेन की एक खूबसूरत पेंटिंग भी छापी गई है। कुछ लोग इसे उनकी उम्र से जोड़कर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि शिबू सोरेन अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन शिबू सोरेन इसे उनकी अज्ञानता करार देते हैं। उन्होंने कहा कि क्या बूढ़े लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है?
ट्राइबल लोग जो हैं उन पर बहुत अगाध विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमने उनकी अच्छाई के लिए उनकी बुराइयों का हम बहुत जोरदार विरोध किया।
वे पूरी मुस्तैदी से चुनावी मैदान में हैं और उन्हें अपनी जीत का भरोसा भी है। साल 1980 में दुमका से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शिबू सोरेन ने 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009 और 2014 के आम चुनावों में भी यहां से जीत हासिल की। इस बीच वे एक बार राज्यसभा गए, तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री और दो बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। दुमका सीट पर उनके सिर्फ तीन बार हार हुई, जिसमें दो बार उन्हें बाबूलाल मरांडी ने हराया। इस बार बाबूलाल मरांडी खुद उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? इस सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बीबीसी से कहा,
देखिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप पिछले चुनाव को देखें, 2014 में हम यहाँ से चुनाव लड़े थे, हम दोनों आमने सामने लड़े थे और बीजेपी भी थे, तो हमको पिछले दफा 158,000 वोट मिला था। इस वक्त हम लड़ नहीं रहे, तो स्वाभाविक है कि उस समय वो 40,000 वोट के मार्जिन से शायद वो जीते थे, तो इस बार तो सीधे वोट जंप करेगा। तो यहाँ तो कहीं कोई लड़ाई दिखता ही नहीं है कि बीजेपी कोई टक्कर दे पाएगी यहाँ शिबू सोरेन को।
लेकिन भाजपा इस गणित से इत्तेफाक नहीं रखती। इन दिनों दुमका में कैंप कर रहे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस बार शिबू सोरेन की हार तय है, क्योंकि 5 साल के दौरान उन्होंने संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा।
सीएनटी एसपी एक्ट का उल्लंघन कर ये गोला और नेमरा का रहने वाला सोरेन परिवार दुमका में करोड़ों की जमीन कैसे खरीदा? बरेड में हेमंत सोरेन एमएलए बने, वहाँ भी साहेबगंज में पतना में करोड़ों की जमीन खरीदा, धनबाद में खरीदा, बोकारो में खरीदा, पाकुड़ में खरीदा, जमशेदपुर में खरीदा, कहाँ कहाँ झारखंड में जमीन नहीं।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिबू सोरेन को राजनेता के तौर पर नहीं देखते, उनके लिए वे आज भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनके आंदोलन के दिनों के साथ ही विजय कुमार सिंह कहते हैं कि शिबू सोरेन व्यक्ति नहीं विचारधारा है।
देखिए शिबू सोरेन एक विचारधारा है और उस विचारधारा को जानने के लिए उनकी जीवनी जानना बहुत जरूरी है कि अपने प्रारंभिक समय में जो एक मामूली सामाजिक कार्य से जो जिन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया।
स्टेशन पर मेरी मुलाकात रिक्शा चलाने वाले मंगरू हांसदा से। शिबू सोरेन की चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि वे हमारे भगवान हैं और भगवान को कोई नहीं हरा सकता। वहीं दूसरी तरफ भाजपा उम्मीदवार सुनील सोरेन को भरोसा है कि इस बार नरेंद्र मोदी की लहर है और इस कारण उनकी जीत तय है। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए झारखंड के दुमका में।
और झारखंड के बाद अब चलते हैं बिहार। बिहार से भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी पिछले बार के मुकाबले इस बार और ज़्यादा सीटें जीतेगी और बिना किसी दिक्कत के एनडीए की सरकार बन जाएगी। पटना में बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार से एक खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटें जीतेगी। प्रदीप कुमार ने सबसे पहले यही पूछा कि 6 चरणों के चुनाव हो जाने के बाद बीजेपी की पोजीशन उनको क्या लगती है।
पूरे देश में 6 चरणों का चुनाव होने के बाद जो देश भर से रिपोर्ट आई है, उससे ये बात स्पष्ट है कि पिछली बार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने वाली है और एनडीए गठबंधन की सीटें भी बढ़ने वाली है।
भूपेंद्र जी, अब बिहार की बात करते हैं। जब बिहार की कमान आपको दी गई थी, तो जब आप बैठे होंगे रणनीति के तौर पे, तो बिहार की रणनीति बनाते वक्त कौन पहली 3 बातें थी जिसका आपने ख्याल रखा और उसको इम्प्लीमेंट किया?
देखिए, बिहार में हमारी पार्टी एक लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड के साथ स्वाभाविक गठबंधन के रूप में चल रही है। तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्पना, उनका विषय, उनका गरीब कल्याणकारी योजना को प्राथमिकता, विकास को प्राथमिकता, वो विषय है। एक मजबूत गठबंधन भी है और बिहार के जो सामाजिक समीकरण हैं उनको पूरी तरीके से संतुलन बनाते हुए हम लोग चुनाव लड़े हैं।
आप सामाजिक संतुलन की बात कर रहे हैं और मैंने देखा है विपक्ष के जो नेता हैं भाषणों में, बहुत बड़ा मुद्दा इस बार बिहार में आरक्षण को बना रहे हैं और आरक्षण महागठबंधन का मुद्दा है कि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है, संविधान खतरे में है। दूसरी तरफ आपकी पार्टी और आपके बड़े नेताओं के जो बयान हैं वो राष्ट्रवाद से ज़्यादा जुड़े हुए दिखते हैं, कम से कम जो भाषणों में इस्तेमाल हो रहे हैं।
देखिए, जनता इस तरीके को समझती है, जब वो कहते हैं संविधान खतरे में है तो उनके लिए संविधान करते हैं उनका परिवार, कि उनका परिवार का अस्तित्व खतरे में है। उनके लिए संविधान कोई एक संकल्पना, संविधान कोई एक प्रतिबद्धता का विषय नहीं है। उनके लिए उनका अपना निजी अभिमान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमारे सामने जो विपक्षी हैं उनको बार बार ये पूछा गया है कि भाई ये पिछड़े वर्ग को संवैधानिक आयोग बनाने के लिए जब राज्यसभा में कांग्रेस विरोध कर रही थी तो वो तो उनके साथ खड़े थे और वो इतनी बातें मंच पे कर रहे हैं यहाँ पर, वो संसद में क्यों नहीं बोले जा करके? उनके प्रतिनिधि थे, राज्यसभा में क्यों मौन रहे? और ये जो पिछड़े वर्ग का संवैधानिक आयोग है, ये तो 10 वर्ष हांडिक कमेटी की जो पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट थी, ये तो मनमोहन सिंह जी के समय में भी थी, क्यों नहीं लागू कराया? एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को हमने और हमारे नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है, हम संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण को एकदम जारी रखेंगे। और उसके अतिरिक्त अगर सामान्य समाज के भी वर्ग में गरीबी के कारण 10% आरक्षण दिया है तो आरजेडी क्यों विरोध कर रही है? इनकी कथनी और करनी को जनता मानती है, कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। आज राष्ट्रीय जनता दल को जो एक तरीके से सजा मिली है वो भ्रष्टाचार के कारण मिली है, कोई सुशासन के कारण नहीं मिली है।
उनका तो कहना है कि उनको फंसाया गया है तो और साजिश करके फंसाया गया है, बाकी दूसरे लोग जो हैं वो जेल से बेल पे हैं और उनको चुनाव के दौरान तो, जानबूझ के बेल तो, नहीं दिया जा रहा।
उनके तो पिताश्री के खिलाफ जो कंप्लेंट करने वाले शिवानंद तिवारी, वो तो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जो शरद यादव जी कहा करते थे कि उन्होंने लालू जी को अंदर किया है, वो तो आज उनके उम्मीदवार हैं, तो वो शिवानंद तिवारी जी से उपाय क्यों नहीं पूछ लेते? भाई इस केस के कंप्लेनेंट कौन थे? शिवानंद जी थे या नहीं थे? तो उनकी पार्टी के तो उपाध्यक्ष हैं।
अगर उस पार्टी को रहने भी दें, एक आरजेडी को, लेकिन ये बात सच है कि 5 साल पहले जो सबका साथ सबका विकास के नाम से मोदी जी ने एक राजनीति शुरू की थी, वो इस चुनाव आते आते तक पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे, राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ा जा रहा है, तो वो मुद्दे क्या पीछे छूट गए?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसानों की दुगनी आय के लिए सरकार ने क्या क्या हमेशा बताया, देश के आधारभूत ढांचे बड़ी अर्थव्यवस्था बने इसके लिए हम लोग फ्रिजाइल 5 से दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में आए हैं, ये हमेशा बताया है। प्रशासनिक सुधार को हमेशा बताया है, समावेशी विकास को हमेशा बताया, हमने सारे विषयों को लिया और इसलिए हमने कहा है कि राष्ट्रवाद और विकास ये कोई दो अलग अलग चीज़ नहीं है, समानांतर चलने वाली चीज़ है, एक दूसरे की पूरक है। बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि राष्ट्रवाद विकास के इंजन के रूप में भी काम करता है।
लेकिन जो बातें पहले हो रही थी, रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, या आप एक तरह से कह लें कि शासन व्यवस्था, बिहार में आए दिन अपराध कम नहीं हो रहे हैं, इन मुद्दों पे ऐसा लगता है कि ये मुद्दे अब राजनीति में नहीं है, चुनाव में कम से कम नहीं है।
पहला विषय तो मैं आपको कहना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ये कहा कि हमने पिछले एक कार्यकाल में 17 करोड़ मुद्रा के ऋण बांटे, अब कि हम 30 करोड़ करेंगे। हमने शिक्षा के अनुपात, उच्च शिक्षा के अनुपात को बढ़ाने की बात अपने घोषणा पत्र में करी। हमने नौजवानों को 50 लाख रुपए के बिना कॉलेट्रल के ऋण की बात करी। हमने कौशल विकास की बात करी। हमने स्टार्टअप की बात करी। हमने भारत में 16 करोड़ रुपए के निवेश की बात करी। जहाँ तक किसान के क्षेत्र की बात है, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समन्वित रूप से कौन से 75 कदम पूरे किए गए, ये बात हमने करी। अब आप जो हिंसा और सुशासन की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जब लालू जी का शासनकाल रहा 1990 के बाद से लेकर के 2005 तक, आपको पता है बिहार में पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर 691 लोग मरे थे, 47 पुलिसकर्मी नक्सली घटना में मरे थे, मतदान कर्मी मरे थे। 2005 के बाद, 2005 से 2015 तक पिछला जब विधानसभा चुनाव हुआ तो एक ही व्यक्ति हुआ था, आज बिहार में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है, ये सुशासन नहीं है तो क्या है?
ये थे बीजेपी के महासचिव और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का। जी बताएं दिनेश
जी। इकबाल, भोपाल से बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पहले देशभक्त बताने और फिर माफी मांगने की खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रचार और विद्यासागर की मूर्ति को लेकर मोदी और ममता बनर्जी के बयान भी अखबारों की सुर्खियां बने हैं। मोदी ने कहा कि बंगाल पुलिस राज्य सरकार के साथ सांठगांठ कर मूर्ति तोड़ने के साक्ष्य मिटाने का प्रयास कर रही है, जबकि ममता ने जवाब दिया प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह विद्यासागर की मूर्ति बनवाएंगे, क्या वे 200 साल पुरानी विरासत लौटा सकते हैं? यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी के 23 मई को विपक्षी दलों की बैठक बुलाने की खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की कोशिश थी कि चुनाव परिणाम से पहले विपक्षी दल बैठक कर रणनीति तैयार करें, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मायावती परिणामों के बाद बैठक के पक्ष में थे। हिंदू ने गुलाम नबी आज़ाद के एक बयान को पहले पन्ने पर छापा है कि अगर 23 मई के नतीजे गैर भाजपा पार्टियों के पक्ष में रहते हैं तो उनकी पार्टी पीएम पद के लिए किसी तरह का जोर नहीं लगाएगी। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि उनकी पार्टी का ये शुरू से ही मानना रहा है कि ये वो क्षेत्रीय दलों से इस बारे में कोई भी जोर नहीं लगाएगी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सीबीआई ने बोफोर्स की जांच की इजाज़त के लिए दायर अर्जी वापस ले ली है। सीबीआई ने बताया कि जांच एजेंसी 1 फरवरी 2018 को दायर अर्जी वापस लेना चाहती है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि वह आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेगी, लेकिन इस समय वह अपनी अर्जी वापस लेना चाहती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ों में 6 चरमपंथियों समेत 9 लोगों के मारे जाने की खबर भी कई अखबारों में है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शीर्ष उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लैट तैयार करने की देरी की सीमा निर्धारित कर दी है। आयोग ने कहा है कि अगर बिल्डर 1 साल से ज़्यादा देरी करता है तो खरीदार रिफंड का दावा कर सकता है। आयोग ने कहा कि अगर घर सौंपने के वादे की तारीख से 1 साल के बाद भी बिल्डर पोजीशन नहीं दे पाता है तो खरीदार अपना पैसा वापस पाने का हकदार है।
बहुत शुक्रिया दिनेश अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ रेखा। शुरुआत करते हैं टेनिस से। होने वाले फ्रेंच ओपन 25 मई से 9 जून के बीच खेले जाएंगे। दो बार की चैंपियन मारिया शारापोवा ने कंधे की चोट के कारण फ्रेंच ओपन से नाम वापस ले लिया है। 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन शारापोवा ने जनवरी के आखिर में रूस में एक टूर्नामेंट से पीछे हटने के बाद से टेनिस नहीं खेला है। 2 साल पहले डोपिंग के कारण 15 महीने का प्रतिबंध झेलकर लौटी शारापोवा तभी से फिटनेस हासिल करने के लिए जूझ रही हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलियाई दौरे के 4th मैच में बुधवार को मेजबान टीम से 0-4 से करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पहले 3 मैचों में जीत इंडिया के ही खाते में दर्ज हुई थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट हरबिंदर सिंह?
ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग टीम है और उनके घर में जाकर खेल रहे हैं, हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो बड़े गौरव की बात है। और ये जो अगर यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उन्हें जो क्वालिफायर, ओलंपिक क्वालिफायर यहाँ पर भी काफी मदद मिलेगी, क्योंकि ताकि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सके।
और अब बात क्रिकेट की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मौजूदा श्रृंखला में लग रहे रनों के अंबार को देखते हुए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक फैंस स्कोर कार्ड को नए डिजाइन में तैयार किया है, जिसमें टीम का स्कोर का स्केल 500 तक कर दिया गया है। इंग्लैंड के मैदानों की खासियत प्रिंटेड स्कोर कार्ड भी है, जो खेल के बाद दर्शकों को 1 या 2 पाउंड में दिए जाते हैं, जो उनकी स्मृति का हिस्सा होता है। इंग्लैंड ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में 6 विकेट पर 481 रन बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा श्रृंखला के दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 373 रन बनाए थे, जवाब में पाकिस्तान ने 361 रन बना लिए थे। सपाट पिचों पर 500 रन का स्कोर भी पहली बार विश्व कप में बन सकता है।
और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी करने और नई प्रवासन नीति का खाका पेश किया है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 19 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। 7वें चरण में 8 राज्यों में 59 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर वोटिंग होगी। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग ने कहा है कि उसने विवादित मॉडल 737 मैक्स के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का काम पूरा कर लिया है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री बिल्बर रॉस ने कहा है कि चीन की टेलीकॉम कंपनी ख्वावे पर अमेरिकी बाजार में पहुंच पर लगा प्रतिबंध आज से लागू हो जाएगा। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने वादा किया है कि जून के पहले हफ्ते में ब्रेक्सिट पर वोटिंग के बाद वो अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए टाइम टेबल निर्धारित करेंगी। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली थी राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।